नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल की 2 दिन की यात्रा पर आज तेल अवीव पहुंचे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल द्विपक्षीय चर्चाओं में शामिल होने और सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा कवर कर रहे हमारे विशेष संवाददाता ने बताया है कि यात्रा दोनों देशों की मित्रता को और मजबूत करेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इसराइल दौरे पर आज तेल अवीव आ पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर इसराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे ही इसराइल से कई गणमान्य लोग भी हवाई अड्डे पर उपस्थित रहे। हवाई अड्डे पर स्वागत विधि के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ऐसा कहा जाता है कि ये निजी बातचीत में द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। यरूशलेम में इसराइल की पार्लियामेंट कनेसेट को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के 2 दिन के इस दौरे का प्रमुख आकर्षण इसराइल की संसद को संबोधन है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इसराइल की संसद को संबोधित करेंगे। यहाँ के 120 सांसद और पूरा ही इसराइल एक तरह से देखे तो प्रधानमंत्री के संबोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री का यहाँ एक एग्जीबिशन में जाने का भी कार्यक्रम है। धीरज काकड़िया, आकाशवाणी समाचार, यरूशलेम।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 1,92,000 करोड़ रूपये वितरित किए जा चुके हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों की पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने इस वर्ष फरवरी तक पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके हैं। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री कुमारस्वामी ने बताया कि इनमें 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और लगभग 3 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण में तेजी आई है और प्रमुख शहरों में 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि जनहित से समझौता करना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है।
राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ऊंची राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी एंड गांधी फैमिली दैट वी सी टुडे, वेदर इन पार्लियामेंट, वेदर आउटसाइड पार्लियामेंट। वी हैव सीन द बिहेवियर विद द प्रेस। यू कांट इवन आस्क एन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन टू मिस्टर राहुल गांधी। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहे।
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में तैनात किए जा रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को आवंटित वाहनों में GPS ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया है। आयोग ने पिछले चुनावों में इनकी अप्रभावी तैनाती को लेकर मिली शिकायतों के बाद ये कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ आज चेन्नई पहुंचे। आयोग का ये दल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। इस दौरान जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के कसबलारी इलाके में आज सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान IED, चीन निर्मित ग्रेनेड, गोलियां और पिस्तौल बरामद किए गए। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक मुकाबले में 3-1 से जीत दर्ज की। 1-1 से मुकाबला बराबरी पर होने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।